ओम शांति। आज का विषय है हम कोरोना वायरस के संक्रमण से कैसे बचें। कोरोना वायरस बेसिकली क्या है? कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है, गले के सांस की नाली को इन्फेक्शन करने वाला वायरस है। और इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? क्योंकि कोरोना माने क्राउन, जैसे क्राउन होता है ना, ऐसे गोल गोल उसके आसपास चक्र किरणें निकल रही हैं सूरज के माफिक, है ना, ऐसा वायरस है ये, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहते हैं। और ये कोरोना वायरस 2002 में पहली बार आया था भारत में, मतलब जो चाइना से शुरू हुआ था। और इसमें ये जो इन्फेक्शन था, ये पहले इससे क्या हुआ, जब इन्फेक्शन चाइना में शुरू हुआ तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, फीवर आया, खांसी हुई और सांस लेने में तकलीफ, वो दोनों फेफड़ों में निमोनिया। तो लगभग ये 80% केसेस में इस तरह से मतलब देखने में आ रहा था, जिससे काफी लोग इन्फेक्शन हुआ, काफी लोग मरे भी, किंतु 2003 तक खत्म हो गया, अपने आप ही खत्म हो गया, उसको दोबारा नहीं आया। फिर 2012 में फिर एक दूसरा कोरोना वायरस आया, वो मिडल ईस्ट में आया, सऊदी अरेबिया में आया, 2012 में आया। मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार कोई वायरस आया है, ऐसा नहीं। डर अपनी सबसे, आज ये क्लास मैंने क्यों आज सुबह सुबह अमृत तिलक योग करा था, वैसे टॉपिक था नेगेटिव और वैध चिंतन से कैसे बचें, पहले क्लास ये वाली डिसाइड की गई थी। फिर मुझे अमृत वेले बाबा ने जैसे टच किया कि बच्चे नहीं, आप इस पे हमारे भाई बहनों को, टीचर बहनों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ताकि वो मैसेज सबको दे सके, डर निकाल सके। डर अगर हमें नॉलेज होती है ना, ज्ञान होता है, समझ होती है, समझ में रोशनी होती है तो हम घबराते नहीं है। अगर रोशनी नहीं होती तो हम घबरा जाते हैं, अंधेरे में घबरा जाते हैं। अगर ज्ञान नहीं हो, समझ ना हो इस बात की, तो हम घबरा जाते हैं, हर बात में घबराते हैं। हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए? डरने की ऐसी कोई खास बात नहीं है, फिर भी थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके हम इससे बच सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा गहराई समझेंगे और फिर राजयोग का प्रयोग कैसे करें। ऐसा हमारा बाबा हमें एक नई एक विधि सिखा रहा है, जीवन जीने की कला सिखा रहा है, जिसके आने वाले समय में ऐसे से वायरस आने वाले हैं, ऐसे से इन्फेक्शन आने वाले हैं जो आप पूछ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हो। उनकी कोई दवाई, जैसे अब इसकी दवाई कोई भी अभी नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कम से कम 18 महीने 2 साल लगेंगे बनने में, तब जाकर के ये इन्फेक्शन हमारे कंट्रोल में आएगा, है ना। किंतु हमें अगर समझ होगी तो हम आने वाले समय में हम अपना इतना पवित्रता का ऑरा बना लेंगे, इतना बड़ा लाइट का ताज बना लेंगे, इतनी दुआओं, इतनी जो स्व के पुरुषार्थ का खजाना जमा कर लेंगे, इतना अधिक अपने अंदर दुआओं का खजाना जमा कर लेंगे, इतना अधिक पुण्य का खाता, तीन खाते बाबा ने कल बताया ना, स्व पुरुषार्थ का खाता, दूसरा किसी चीज का खाता, दुआओं का खाता, संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करके जो दुआओं का खाता, और तीसरा कौन सा खाता, निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तीनों खाते हम इतने जमा कर लेंगे, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हम कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी महामारी हमको टच भी नहीं कर सकेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम गहराई में समझते हैं कि कैसे हम राज्यों का प्रयोग करें, और बाबा ने जो हमको जीने का तरीका सिखाया उसके द्वारा हम कैसे परमात्मा के तरीके से, जो परमात्मा धनवंतरी है, जो वैद्यनाथ है, सारे विश्व के डॉक्टर भी उसी को ही याद करते हैं इलाज करने के पहले, है ना। जब कोई डॉक्टर इलाज करने में सक्सेसफुल नहीं होता तो कहते हैं उसको याद करो, है ना। तो ये जो है तरीका बताया हुआ, वो मैं आपसे, मॉडर्न तरीका भी क्या है और परमात्मा का बताया हुआ तरीका क्या है, अर्थात राजयोग मेडिटेशन के द्वारा कैसे अपने आप को इम्यूनिटी पैदा कर लो, अगर वो मेथड आप अपना हम अपना लेते हैं, ना खाली हम कोरोना वायरस से बल्कि शरीर और मन की सभी बीमारी से चुक्त हो सकते हैं, अर्थात मुक्त हो सकते हैं। मन और शरीर की कोई बीमारी हमें तंग ही नहीं कर सकती है, भले बीमारी आएंगी भी, ऐसा नहीं है बीमारी नहीं है, कर्म भोग तो आएंगे, किंतु हमें सूली के मासिक आएंगे और कांटा बन के निकल जाएंगे, और कांटा भी क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा, मतलब अनुभव बन जाएगा कि कैसे हम उससे बाहर निकले। तो मैं कोरोना वायरस के बारे में आपको बता रहा था कि कोरोना वायरस 2012 में जब आया तो उससे क्या, उससे भी वही तकलीफ हुई, सांस की तकलीफ हुई, और सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई और लोगों को ऐसा तकलीफ हुई। अभी भी दिसंबर 2019 में ये वायरस आया और ये चाइना में शुरू हुआ। और ये चाइना में कहां से शुरू हुआ, जो पोल्ट्री जो होता है ना, जहां होलसेल मार्केट होती है ना, मीट की होलसेल मार्केट होती है, और बेसिकली ये सांप जो होते हैं ना, स्नेक्स जहां होते हैं, स्नेक सांप और चमगादड़ बैट्स, इनसे फैलता है। ये कोई इंसानों का वायरस नहीं है, इंसानों के अंदर वायरस नहीं था, ये वायरस सांपों में होता है, स्नेक्स में होता है और चमगादड़ में होता है, जो रात में निकलते हैं, अंधेरे में निकलते हैं, इनके अंदर एक कीटाणु होता है और वायरस होता है। और इसका जिन्होंने मीट वगैरह खाना, इनसे जो इनको हैंडल करते थे, उसका वायरस इंसानों में ट्रांसफर हुआ, राइट। कुछ चीजें पोल्ट्री फॉर्म में भी हो सकता है अगर वहां पर हाइजीन ठीक ना हो। तो बेसिकली ये वायरस चाइना के एक वुहान नाम का प्रांत है, वहां पर पहली बार अनुभव किया गया दिसंबर 2019 में। और अभी तक आज की जो रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट अर्थात 1 बजे तक, आज 7 तारीख को 1 बजे तक जो संख्या है वो 1,02,297 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अभी तक, और उसमें से 3,497 लोगों की डेथ हो चुकी है, और रशिया चाइना में 3,070 लोग मर चुके हैं अभी तक इससे ना, और बाकी देशों में कितने 427 केसेस की डेथ हुई। तो बेसिकली चाइना में सबसे ज्यादा लोड है, फिर कुछ देश ऐसे हैं जैसे साउथ कोरिया में काफी सारे केसेस हैं, है ना, 90% से ज्यादा केस तो चाइना में ही है, 95% के लगभग, कुछ थोड़े से केसेस जो है 90% के आसपास समझो वहां पर चाइना में है, और बाकी थोड़े से केसेस जो है वो है साउथ कोरिया में, उसमें भी हजारों की संख्या में है, और फिर है ईरान में, तीसरा नंबर ईरान का है, और चौथा नंबर जो है इटली का है। और फिर एक शिप था जापान की तरफ, उसमें 626 लोग थे, उसमें से 6 लोग की डेथ हो गई, 626 लोगों में से 6 लोगों की डेथ हो गई, वहां भी काफी इन्फेक्शन, वो शिप वहीं खड़ा योकोहामा में खड़ा हुआ है, और उसमें भारतीय भी घुसते है ना, भारतीयों को 128 भारतीय थे, उसमें से उसको यहाँ लेके आया गया, हमने इसको रेस्क्यू कर लिया, तो उसमें से 6 लोग डेथ हुई टोटल मिला के, है ना। तो बेसिकली मेरा कहने का, और भारत में सिर्फ अभी तक 31 केस रिपोर्ट हुए हैं, 3 की रिकवरी हो गई है, 628 लोगों को हम लेके आए थे वुहान प्रांत से, उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स थे, उसको हमने छावला नाम की जगह है, CRPF का बेस कैंप है, वहां रखा था, उसको हमने क्वारंटीन में रखा 3 हफ्ता, और उसके बाद अब छुट्टी कर दिए, और 3 केस तो रिकवर हो गए उसमें से, हमारे टोटल केसेस में से जिसमें पॉजिटिव केस थे 28 केस एक्टिव केसेस हैं अभी, है ना। तो मैं संख्या इसलिए बताया था कि आप डरो नहीं, है ना, भारत में 130 करोड़ लोग हैं, है ना, ठीक है, उसमें से कितने केस हैं भारत में, 31, सिर्फ 31, है ना, समझ रहे, उसमें से 3 केस ठीक हो चुके हैं, 28 को मतलब सर्वेलेंस पीरियड में रखना पड़ता है, क्वारंटीन में रखना पड़ता है, इलाज कर रहे हैं, कोई सीरियस नहीं है उसमें से, 28 में से वो ठीक हो जाएंगे, 6 केस में से 1 केस में कुछ प्रॉब्लम होती है, खतरनाक होता है, मतलब उसमें रिस्क होने का चांस होता है, खतरा होता है, 6 में से 1 मतलब लगभग 15% केस में, ठीक है, इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई सभी को, लगभग 6,000 केसेस ऐसे हैं, मतलब जो 1,00,000 में से 61,000 लोग तो ठीक, उनको रिकवर कर लिया गया, ठीक हो गए, मतलब 61,000 लोग ठीक हो गए, उनको रिकवरी कर दी गई, है ना। अब उसमें से सिर्फ कितने बचे हैं, उसमें से 3,497 केस मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है, 57,000 लोग ठीक हो चुके हैं, अब 40,000 केस हैं, उसमें से भी 90% ज्यादा केस ठीक हैं, माइल्ड केसेस हैं, माइल्ड डिजीज है ना, सिर्फ 6-7% लोग, लगभग 6,000 केस पूरे वर्ल्ड में, है ना, वो थोड़े से उनका इलाज चल रहा है सीरियस हालत में, ना, ठीक है। तो इस तरह की फिगर्स हैं, जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, WHO की फिगर्स हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की फिगर्स हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान कैसे करें, जैसे आम जुखाम होता है ना, हमको जुखाम हो जाता है, हमको गला खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है, शरीर में हरारत होती है, ऐसे सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं, पहली जो सबसे ज्यादा सिम्टम जो है वो फीवर है, बुखार होता है 99, 100, 101, 102 तक बुखार होता है और सारे शरीर में दर्द होता है। फीवर सबसे पहली बात फीवर है, दूसरी बात कफ है, ठीक है, तीसरी बात है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लगता है। अगर आपको फीवर के साथ खांसी है और अगर आपका सांस फूल रहा है, 80% केसेस में से ज्यादा केसेस में ऐसा हो रहा है, अगर सांस फूल रहा है, सांस क्यों फूलता है एक्चुअली, क्योंकि 75% से ज्यादा केसेस में दोनों लंग्स में निमोनिया हो जाता है। सांस फूलने का कारण क्या है, दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है, बाइलेटरल निमोनिया। 100 केसेस में 75 में जिनको सीवियर डिजीज है, उनको सबको नहीं होती सीवियर डिजीज, सबको बाइलेटरल निमोनिया नहीं होता है। जैसे 6000 जो केस है ना उसकी मैं बात कर रहा हूं, सारे विश्व में 1 लाख से ज्यादा केसेस में से सिर्फ 6000 लोगों में ऐसी प्रॉब्लम है कि दोनों फेफड़ों में निमोनिया, जिनकी डेथ हुई है उनकी भी इसी कारण से डेथ हुई है। इज इट क्लियर, कितने परसेंट हुए, मतलब टोटल जो केसेस हैं उसमें से सिर्फ 6 में से 1 केस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या समझो 10 से 15% केस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब इसको इलाज बड़ा सिंपल, तो फीवर, कफ और तीसरा क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, और एक्सरे में अधिकतर सांस फूलने के कारण दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो जाना, तो ये कारण होता है। बाकी नाक का बहना सिर्फ 4% केस में होता है। ये ध्यान रखना है कि नाक, जैसे नेजल डिस्चार्ज बहुत कम लोगों में, 100 में से 4 लोगों में होता है। डायरिया 2% केस में, किसी किसी को डायरिया भी, डायरिया मतलब लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं, ऐसा केस हो जाता है, ठीक है। हेडेक हो सकता है, हेडेक जैसे आम जुखाम में भी हेडेक हो जाता है उसी तरह का हेडेक, बट ये हेडेक थोड़ा सीवियर होता है, जोर से होता है, ठीक है। अब ये तो इसके सिम्टम्स हो गए, मुख्य सिम्टम्स यही वाले हैं, मुख्य सिम्टम्स ये वाले हैं। और इसमें वीकनेस बहुत फील होती है, जैसे हमेशा हर जुखाम में वीकनेस फील होती है, हर यूआरटीआई में जो फ्लू होता है ना, फ्लू में यही सिम्टम, सेम सिम्टम्स होते हैं। अब प्रॉब्लम बेसिकली, ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये जो इन्फेक्शन है जो बाकी कोरोना वायरस आया 2012 में आया, मिडल ईस्ट में आया, सऊदी अरेबिया में आया, और अभी जो वायरस आया है ये बहुत तेजी से फैलता है। अभी 1 तारीख को सिर्फ 57 कंट्रीज में था और 1 तारीख से लेकर 7 तारीख से 40 देशों में और फैल गया। आज 97 देशों में बीमारी फैल चुकी है, 97 कंट्रीज में। और पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ 6 केस रिपोर्ट हुए हैं, वहां की शायद अंडर रिपोर्टिंग भी है, और 1 केस को उन्होंने रिकवर हो गया उसमें से। तो यूएसए में भी लगभग 14 लोग मर गए हैं इस इन्फेक्शन से ना, यूएसए में। तो मतलब हमें क्या ज्यादा समझना है कि अभी सारे देशों में लगभग 97 देशों में ये बीमारी फैल चुकी है, और इसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पहली बात, ये जो बीमारी है ये लो इम्यूनिटी वालों को होती है, लो जिनकी इम्यूनिटी बीमारी से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। किन किन को ध्यान रखने की इसकी आवश्यकता है, सबसे पहले तो जो जिनको डायबिटीज है, जिनको जो पेशेंट जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको अधिक चांस होता है इन्फेक्शन, और स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो। अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में तो कोई डरने की बात नहीं है, आपकी शुगर खाली पेट 100 रहती है और खाने का 140, 150, 160 रहती है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल, आपको लगभग खतरा ना के बराबर है, जितना आम आदमी को खतरा उतना आपको भी खतरा है। दूसरे जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं या हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं, हार्ट के वाल्व से सिकुड़ जाते हैं, अर्थात जिनको हार्ट की बीमारी है उनको भी ज्यादा अधिक चांस होता है, ये उनको ये बीमारी अगर पकड़ ली तो मुश्किल से निकलेगी। ऐसे डायबिटीज को मुश्किल से निकलती है, दूसरा हार्ट के पेशेंट्स को मुश्किल से निकलती है, और तीसरी जो बात है जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको भी चांस अधिक होता है इन्फेक्शन होने का। चौथी बात जो है वो है जिनको उम्र 60 से ज्यादा है, जो बूढ़े लोग हैं, 60 साल से अधिक उम्र के लोग, सीनियर सिटीजन जो है उनको भी ये इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा तो बहुत ध्यान मुश्किल निकलेगा, राइट, रिस्क ज्यादा हो जाएगा। और पांचवी जो बात है वो है, अगर आप किसी कारण से आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराई, लिवर ट्रांसप्लांट कराया, या आपको कैंसर हुआ, आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या इम्यूनो सप्रेशन, कई दवाई ऐसी लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद, हमें ऐसी दवाई लेनी पड़ती है जिससे हमारा वो लीवर रिजेक्ट ना हो, हमारी किडनी रिजेक्ट ना हो। तो वो लंबे समय तक सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद, है ना। या कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया या कोई भी बॉडी का कैंसर हो जाता है तो बाद में कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है। तो ऐसे मरीजों को ज्यादा चांस है। आप देख लीजिए इनमें से कोई चीज आपको है, जिनमें से इनमें से कोई चीज है हाथ उठाओ। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, कोई कीमोथेरेपी ले रहे हो, हाथ उठाओ। कितने परसेंट लोग हैं, उठाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, मैं देख लेता हूं कितने लोग हैं ना। मुश्किल से 20-25 लोग हैं, है ना। ठीक है, ज्यादा लोग हैं सभा में इस टाइम, कम से कम 5,000 लोग तो होंगे, है ना, ज्यादा ही होंगे, है ना। तो इनमें से 25 लोग कितने परसेंट हुए, कितने परसेंट हुए बताओ। तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, और 25 लोगों को भी डरने की बात नहीं है, मैं उनके लिए बताता हूं क्या करने का। ठीक है, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी जो आज जो बीमारी, एक बात अभी WHO ने रिपोर्ट की है, वो समझने की बात है कि आज जो हम कहते हैं हर्बल मेडिसिन ले लो, ये एंटीबायोटिक खा लो, कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। ये वायरस है ना, इसका कोई एंटीबायोटिक कोई भी खा लो आप, कितनी स्ट्रांग से स्ट्रांग एंटीबायोटिक खा लो, वो आपको नुकसान करती है, फायदा नहीं करती है ना, राइट। वायरस में, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की दवाई होती है, वायरस की दवाई नहीं होती है ना। तो इसके लिए कोई दवाई काम नहीं करती है ना। कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग, कुछ दो ड्रग आई है, किंतु वो आप अपने आप नहीं यूज कर सकते, वो अस्पताल में हम देते हैं मरीजों को, दाखिल करने के बाद देते हैं ना, वो अस्पताल में देते हैं। तो इसलिए इसकी कोई दवाई आप बाजार से लेके खाओ, आपको फायदा कर जाएगी। आपको जुकाम हो रहा है, कुछ तकलीफ हुई, आपने दवाई शुरू, अपने आप दवाई ले ली, को हर्बल मेडिसिन शुरू कर दी, उससे कुछ विशेष कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि उससे कोई फायदा होता है। बाकी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या करें, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब आप इससे पहले हमें क्या हाइजीन कैसे रखें, दो बात की हाइजीन आपको रखनी है। एक तो हैंड हाइजीन रखनी है, हैंड हाइजीन समझते हैं, अपने हाथों को स्वच्छ कैसे रखना है, अपने हाथों को स्वच्छ रखना है। दूसरा, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखनी है, सांस की आपको हाइजीन रखनी है। ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है, या तो जैसे हमने खांसी की, खांसी में वो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के रूप में निकलता है और हवा के थ्रू आपको पास नहीं आता है। तो जिसको भी खांसी हो, अगर उससे आप 1 मीटर दूर हैं, 1 मीटर की दूरी, 3 फुट की दूरी है, तो आपको खांसी करा, आपको इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत कम है। एक तो आप ये मोटी बात नोट कर लीजिए, कोई भी खांसी जिसको है, जुखाम है, वो सभा में नहीं आना चाहिए, ठीक है। या कहीं जहां पब्लिक गैदरिंग है, उसको ट्रेन में जाना, प्लेन में जाना, बस में जाना, भीड़ भड़ाके वाले एरिया में जाना नहीं जाना चाहिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाए। सिंपल है ना, इज इट क्लियर? यस, ये बात समझ में आई आपको? तो अपने घर में रहे, आराम करें। अगर वो सांस में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बैठे बैठे हो रही है, तो डॉक्टर को तुरंत कॉन्टेक्ट करो। डॉक्टर उसका एक्सरे करके देखेंगे, ब्लड टेस्ट करके देखेंगे, तो पता लग जाएगा कि बाइलेटरल निमोनिया तो नहीं है। तो बाइलेटरल निमोनिया तो डर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात तो हमें ये देखने की है। तो जब भी हमें अपने समाज के लिए, अपने देश, घर के लिए, देश के लिए, अगर हम चाहते हैं इन्फेक्शन ना फैले, तो हमें क्या करना है अपने समाज में ना, अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप घर में रेस्ट करें जब तक आप ठीक हो जाए। और फिर अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, फीवर हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या थोड़ा सा आपको खांसी हो रही है, गला थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आम हो रहा है, कोई बात नहीं, बॉडी में दर्द और वीकनेस है, कोई बात नहीं, आप इसके लिए रूटीन में जो मेडिसिन खाते हैं, विक्स लगाते हैं, कुछ काढ़ा बना के पीते हैं, है ना, गिलोय का पानी या कुछ भी, आप काला मिर्च, तुलसी का पत्ता, अदरक जो घर में हम पीते हैं यूजली ना, और थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर, थोड़ा सा गर्म पानी, ये जो वायरस है ये गर्म में टिक नहीं सकता है, 26-28 डिग्री के ऊपर तो मर जाता है। गर्म पानी 28 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर का हो मर जाएगा, उसमें रह ही नहीं सकता है। अगर जुकाम खांसी हो गया, गला खराब हो गया, आप सिर्फ क्या करें, नमक के पानी गरारे कर लीजिए, है ना, सबसे अच्छी दवाई। गला खराब है, जुखाम है, आप नमक के पानी गरारे करिए, थोड़ा कंसेंट्रेटेड पानी ले लीजिए। कंसेंट्रेट समझते हैं, एक गिलास पानी में लगभग आधा गिलास पानी में एक आधा आधा चम्मच नमक, आधे चम्मच से थोड़ा ज्यादा डाल लीजिए, मतलब उसको 1% होता है ना, 0.9% नॉर्मल सलाइन कहते हैं, तो उसको लगभग 1 ग्राम 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक डाल दीजिए, तो वो कंसेंट्रेटेड हो गया, उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस जिंदा नहीं रह सकता। लिस्ट्रीन लोशन गार्गल करते हो या हेक्सिडीन वगैरह से कई बार मरता नहीं कीटाणु, किंतु नमक का पानी गर्म हल्के गर्म पानी में नमक डाल के वो सबसे अच्छा इसका तरीका है ठीक करने का। दूसरा स्टीम ले लीजिए, स्टीम गर्म पानी की स्टीम होती है ना जो, वो भी टेम्परेचर उसका हाई होता है, तो उस जब आपका वो अंदर सांस जाएगा, वो नाक में जाएगा, मुख में जो स्टीम जाएगी ना, एक कैप्सूल कार्बोल प्लस आता है या विक्स भी, आप विक्स वेपोरब भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, तो वो डाल के सुबह शाम दिन में 3 बार स्टीम ले लीजिए, 3-4 बार गार्गल्स कर लीजिए, तो वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया थोड़ा बहुत, कोई कैसा भी वायरस है, चाहे वो कोरोना वायरस है, एडिनो वायरस, कई तरह के वायरस होते हैं, वो उस वायरस अपने आप ही मर जाएंगे, आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। रेस्ट इज बेस्ट, इसके लिए रेस्ट इज बेस्ट ट्रीटमेंट, पहली बात रेस्ट, दूसरी बात नमक के पानी गार्गल्स और स्टीम लेना। अब इन्फेक्शन मेरे को हो गया तो ये क्या मेरे पास कैसे फैलता है, मैंने खांसी की, छींक आई, तो मेरे के द्वारा 1 मीटर के डिस्टेंस तक कीटाणु फैल जाएंगे। इस 1 मीटर के डिस्टेंस में क्या होगा, जिसको जो भी आएगा उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने मान लीजिए किया, तो वो मेरे सामने टेबल है, ये है ना, ये है जैसे, है ना, इसको इसको ये इन्फेक्शन पूरा इसके अंदर चला जाएगा। फिर इसको जो आप हाथ लगाएंगे ना, यूजली 12 घंटे के अंदर अंदर ये वायरस मर जाएगा, अगर हमने किसी ने हाथ लगाया तो। फिर तो अगर 12 घंटे के बाद भी कोई के अंदर किसी ने हाथ लगाया तो उसको भी कीटाणु हाथ पे लगेगा, वो नाक पे लगाएगा, अपने मुख पे लगाएगा, आंखों पे लगाएगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये तरीका है, जब भी आपको खांसी आए, छींक आए, तो हाथ में रुमाल रखिए। रुमाल से भी इसी चीज क्या है, रुमाल से अच्छी चीज है टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर रखिए, टिश्यू पेपर आप रखिए, और टिश्यू पेपर हाथ में जेब में 3-4 टिश्यू पेपर रखिए, और किसी पॉलिथीन में डाल के और एक टिश्यू पेपर निकालिए, और उससे उस पर छींक आए ना, उस पर करिए, और उसको तुरंत डस्टबिन में डाल दीजिए, इधर उधर मत फेंकिए। अपने हाथ पे भी इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाथ पे लगाएंगे तो फिर आपका आप किसी और को टच करेंगे उसको इन्फेक्शन लगेगा। ये बहुत जल्दी इस तरह से स्प्रेड हो रहा है, ये कोई एयरबॉर्न नहीं है, एयरबॉर्न माना मैंने सांस लिया, मेरे सांस के द्वारा किसको लग जाए, ऐसा नहीं है। ये मैं देख रहा हूं कई भाई बहनों को मास्क लगा के बैठे हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं शांति में, कोई मतलब नहीं है मास्क लगा के घूमने का, किसी को भी मास्क लगाने के घूमने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी मास्क लगा के घूमने की आवश्यकता नहीं है, ये डरने और डराने की बात है ना, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। मास्क किसको लगानी है, जिसको जुकाम हो गया, जिसको सिम्टम आ रहे हैं, जुकाम खांसी के सिम्टम आ रहे हैं, वो ये, और इस सिंपल मास्क काफी है, सिंपल मास्क समझते हैं, ये सिंपल जो मास्क आती है, सिंपल मास्क जो होती है वो आप यूज कर सकते हैं, सिंपल जो कितने पैसे की आती है, मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा पैसे की नहीं आती है, ना 5 रुपए की आती है, 2 रुपए की आती है, और अगर आपके पास मास्क नहीं है, मास्क मार्केट में आजकल नहीं मिल रही है ना, बहुत लोग दीवाने हो गए है ना, फोबिया हो गया लोगों को ना, कि कोरोना वायरस से हमको कोरोना वायरस कहीं से आएगा, हमको चिपक जाएगा, है ना, है ना, ऐसा नहीं होता है ना, इस तरह से कोरोना वायरस नहीं आएगा। अगर आपको जुकाम खांसी हो भी गया है, तो आपके टिश्यू पेपर आता है ना, टिश्यू पेपर आता है, जो टिश्यू पेपर तो मिल रहा है मार्केट में खूब सारा, टिश्यू पेपर को आप इतना सा पीस, अगर वो नहीं, टॉयलेट वाला पेपर नहीं होता जैसे टॉयलेटरी में जो बाथरूम में होता है, वो पेपर को इतना सा पीस काट लीजिए, इतना पीस काट लीजिए, उसके फोल्ड बना लीजिए, ऐसे ना, ऐसे ऐसे कागज को हमें फोल्ड करते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करके दो रबड़ होती है ना जो सिर में लगाते हैं रबड़, है ना, वो रबड़ को एक इस एंड पे एक इस एंड पे थोड़ा सा मोड़ दीजिए, और एक स्टेपलर इधर मार दीजिए, एक स्टेपलर इधर मार दीजिए, ठीक है, आपकी मास्क तैयार हो गई, है ना, है ना, और थोड़ा डबल कर लीजिए, 2 टिश्यू पेपर साथ में लगा लीजिए, है ना, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये वायरस 400 से 500 माइक्रोन का है, तो ये 400 माइक्रोन के वायरस के लिए हमें N25 जो 3 लेयर्ड मास्क उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी जो मास्क की आवश्यकता डॉक्टर्स को है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, है ना, जो हेल्थ केयर से हम डॉक्टर्स हैं, हमारे सब नर्सिस हैं, हमने अपने सभी डॉक्टर्स को दे दिया है ना, जो आईसीयू में काम करते हैं, क्रिटिकल केयर में काम करते हैं, कैजुअलिटी में काम करते हैं, वो सभी नर्सिस को दे दिया है, उसको इसकी आवश्यकता है ना। टोटल मैंने अपने अपने हॉस्पिटल में दिए कितने लोगों को दिए, सिर्फ 22 लोगों को दिए है ना, जो डॉक्टर नर्सिस को सिर्फ दिए, जो इमीडिएट पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, सीरियस पेशेंट है, दूसरी बारी नर्सिस को नहीं दिया, सिर्फ जिनको जरूरत है बहुत उनको ही दिया है। आप समझ सकते हैं मेरे अस्पताल में 350 लोग काम करते हैं, है ना, उसमें सिर्फ 22 लोग, अस्पताल में भी सिर्फ 22 लोगों को दिए, तो आपको डर है क्या इतना मास्क लगा के जब बैठे हो, है ना, डरने की बात नहीं है, है ना। अगर जुकाम खांसी है तो जरूर लगा के रखनी चाहिए, और ये जो है अपना जो बताया मैंने आपको, अच्छा एक तो ये हो गई अपनी ये हाइजीन का ध्यान, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन। मेरी जो है गले का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन किसी को भी ना लगे, किसी सरफेस पे ना लगे। अब दो तरह से अपनी हैंड हाइजीन रख सकते हैं, दो तरह हैं। पहली जो बात है, सबसे बढ़िया चीज है साबुन, जो लिक्विड सोप आते हैं, लाइफ बॉय सोप या कोई भी साबुन, डिटोल साबुन या जो भी आपके घर में साबुन है, लक्स है या डिटोल है, जो भी साबुन आप यूज कर, लाइफ बॉय है, जो भी यूज करते हैं, बेसिकली टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको हाथ धोने। अधिकतर लोग क्या, थोड़ा साबुन लिया, यूं किया और चलो हो गया, है ना, कोई मतलब नहीं है इस हाथ धोने, कोई मतलब नहीं। आप साबुन लीजिए, अच्छे से लगाइए और फिर उंगलियों के बीच में इस तरह से ना, इस तरह से पूरा, है ना, इस तरह से उंगलियों के बीच में, यहां पर और यहां पर और यहां पर, इस तरह से उल्टा करके अंगूठे को इस तरह से, है ना, देख रहे हैं सभी। पहले साबुन को अच्छे से लगाइए, लगा के और फिर उंगलियों के बीच में ऐसे जाइए, है ना, दोनों इसमें, फिर इसके पीछे जाइए, फिर इसके पीछे जाइए, फिर अंगूठे को इस तरह से रगड़िए, फिर इस तरह से रगड़िए और फिर इस तरह से करिए, फिर इस तरह से करिए और फिर यूं करिए, क्योंकि टिप्स में नखूनों के बीच में फंस जाता है, नखून अपने काट लीजिए। स्पेशली बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है ना, बहनों माताओं को, वो नखून लंबे लंबे रखती है, पता किसके लिए रखते हैं मुझे पता नहीं, नखून छोटे रखिए, ठीक है, किसको मारना थोड़ी ना कोई, है ना, तो वो आपको ही नुकसान करेंगे, ऐसे ऐसे काटिए, ऐसे ऐसे करके हर चौथे पांचवें दिन नखून काट लीजिए, है ना, तो इस तरह से कर लीजिए। अब आपको अच्छे से रगड़ना है, कम से कम एक दो मिनट आपको लगना चाहिए हाथ धोने के लिए, ठीक है, इज इट क्लियर। अच्छे से हाथ धो लीजिए और फिर ड्राई होने दीजिए। अधिकतर क्या होता है, हमारा टॉवल गंदा होता है ना, एक वॉशिंग मशीन के टॉवल लटका रहता है, पता नहीं उसमें 50 लोग हाथ पूछते हैं ना, ऐसा नहीं, अपना पर्सनल टॉवल रखिए, उसी को आप यूज करें ना? और वो टॉवल नहीं, 5 दिन उसको यूज करते रहो, वो टॉवल अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं, बेसिकली वायरस आपको 6 हफ्ते और ध्यान रखना है, मैक्सिमम 6 हफ्ते, है ना, 40 दिन, 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल के बाद ये वायरस अपने आप भाग जाएगा, है ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये वायरस भाग जाएगा, है ना, जिंदा रह नहीं सकता है, ये सब ठंडी का वायरस है ना, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखने का, ठंडी वाली, इसमें गर्म चीजें यूज करेंगे तो नुकसान नहीं है, ठंडी चीजें, आइसक्रीम खाएंगे, दूध ठंडा फ्रिज में रख के पियेंगे, आइसक्रीम या आइस कोल्ड ड्रिंक्स को पियेंगे चिल्ड करके, है ना, दूध की बनी चीजें जो है, रबड़ी मलाई ये ज्यादा लेंगे, बासी दूध लंबा रख करके यूज करेंगे, तो उसमें ये इन्फेक्शन ठंडी चीजों से आएगा। इज इट क्लियर, समझ में आई बात आपको? अभी आइसक्रीम, ठंडा दूध, ठंडी आइसक्रीम, मतलब ठंडी चीजें खाना बंद कर दो, है ना, कितने दिन के लिए, 40 दिन के लिए, लंबी बात है क्या? तो आप ये ध्यान कर लीजिए, इतना सा आप ध्यान कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हैंड हाइजीन अपनी अच्छे से रखनी है। दूसरा तरीका है अल्कोहल, जो आजकल हमारे पास स्टेरिलियम के नाम से, 3M के नाम से और भी कई नामों से आता है, उसमें 70% अल्कोहल होता है ना? वो अल्कोहल की बॉटल्स आती है, ठीक है, वो वाली बॉटल, उसमें क्या करना है आपको, अच्छे से वो लेकर के उसको पूरा थोड़ा डाल के अपने हाथों को, अपने इसको सारे अच्छे से रगड़ लीजिए और फिर ड्राई होने दीजिए। कई लोग पेशेंट को छूने के बाद, कुछ चीज को छूने के बाद फिर करते नहीं, पहले आप कर लीजिए, एक लेयर बन जानी चाहिए हाथ पे कोई चीज टच करने से पहले। और जहां आपका, सपोज मैंने खांसी, बाई चांस मैंने खांसी कर दी, तो इसको भी आप स्पिट से, उससे अल्कोहल से साफ कर दीजिए एक बार अच्छे से, जैसे मैं पेन यूज करता हूँ, मुझे लिखना होता है, तो पेन को भी अल्कोहल हम उससे साफ कर लेते हैं, लगा के साफ कर लेते हैं। मेरा स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप को भी हम लोग बार बार पेशेंट को दिखाते हैं, लगाते हैं ना, तो उसको भी हम अल्कोहल से साफ कर लेते हैं। ऐसे अपने सरफेसेस को, घर की सरफेस जहां भी ऐसा लगे, तो अल्कोहल मिलता है मार्केट में 70% अल्कोहल, वो भी आजकल आउट ऑफ मार्केट होता जा रहा है ना, तो वो ध्यान रखने का, वो स्प्रिट आप नहीं तो यूज कर सकते हैं, वो भी बराबर काम करती है। तो इस तरह से आप अपने आप को, और सबसे अच्छा अगर आपके हाथ कहीं गंदे हो गए किसी के साथ, आपको खांसी आई छींक आई और आपका हाथ गंदा हो गया, तो वो अल्कोहल मत लगाइए, पहले साबुन से धो लीजिए, उसके ड्राई होने के बाद ड्राई कर लीजिए टॉवल से, और उसके बाद आप उसको टिश्यू पेपर यूज कर लीजिए हाथ को ड्राई करने के लिए, और उसके बाद फिर अल्कोहल लगाइए, तो आपका इससे वायरस मर जाता है। लगभग सभी वायरस मर जाते हैं, खाली कोरोना का, सभी वायरस मर जाते, सारे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आपको अच्छे से? तो ये इसका तरीका है कि आपको इन्फेक्शन से कैसे बचना है, और जिसको खांसी है उससे 1 मीटर दूर रहना है, इतना ही करने का है। और जिनको खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, कुछ बुखार है, वो अपने कमरे में आराम करें और डॉक्टर की राय से चलें, है ना। बाकी अपने कमरे में, तो कमरे में ही ध्यान रखें किस तरह से उनको यूज करने का, किस तरह से उनको खांसी आ रही है तो टिश्यू पेपर यूज करते जाए, और टिश्यू पेपर को जमीन पर नहीं फेंकना है, बेड पर नहीं रखना है, एक टिश्यू पेपर को बार बार यूज नहीं करना है, टॉवल को, उस रुमाल को बार बार यूज नहीं करना है, वो रुमाल को फिर आप, रुमाल में तो इन्फेक्शन चला जाएगा, फिर रुमाल से आपको बार बार दोबारा इन्फेक्शन लगता रहेगा, वो भी गलत तरीका है। तो बेटर है टिश्यू पेपर। और मास्क, मैंने बताया कि मास्क कैसे बनानी है, मास्क मुश्किल नहीं है, टिश्यू पेपर लो और टॉयलेट में जो राउंड वाला आता है उसमें से भी इतना पेपर एक पीस काट लो और काट के उसका मास्क बना लो। आज ज्यादा ही खांसी वांसी है तो अदरवाइज नहीं कि मास्क लगा घूमते रहो, उससे कुछ फायदा नहीं है, है ना। अच्छा, अब ये जो है, ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई, 1980 के पहले कोई भी वायरल इन्फेक्शन बहुत कम लोगों को होता था, बहुत कम लोगों को। कोई पहली बार 1981 में क्या आया, एड्स आया, HIV आया अफ्रीका में, 20-21 लोगों को पाया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उस समय देखो भारत में क्या, जहां जैसे पवित्रता का ह्रास हुआ सारे विश्व में हुआ है, जैसे जैसे बाबा कहते कल की मुरली से संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता गिरती गई है। पहले तो पवित्रता गिरी तो द्वापर युग से शुरू हुई, किंतु उसके बाद अगर हम देखें 1970 तक फिर भी लोगों में वो था पवित्रता, मतलब इतना ओपन नहीं थी, गंदगी इतनी ओपन नहीं थी। 70 के बाद तो देखें अगर आप कैसे कैसे पवित्रता का डिग्री, अगर फिल्में भी पुरानी फिल्में कैसी होती थी और आज के बाद फिल्में कैसी बनी, और आज टेलीविजन पे सब जगह टोटल गंदगी, जैसे कहते हैं ना टोटल इंसान की बॉडी का उसी का जैसे दिखाते हैं हर जगह ना, टोटल बॉडी कॉन्शियस हो गए है ना। तो ये जो पवित्रता का ह्रास हुआ, फिर साथ साथ क्रोध, हिंसा, पहली हिंसा तो काम विकार और दूसरी हिंसा क्रोध, फिर आतंकवाद आ गया 75 के बाद ना, आतंकवाद आना शुरू हुआ। तो 81 में ये प्रॉब्लम आ गई है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जैसे फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद ये आ गया चिकनगुनिया आया उसके बाद ना, फिर ये अपना ये वाला आ गया जो दूसरा वाला स्वाइन फ्लू आया पीछे ना, ये जो मैंने बताया ना सार्स बोलते हैं उसको, दूसरे को मर्ज बोलते हैं, तो ये स्वाइन फ्लू आया है, दूसरे सारे इन्फेक्शन आए, कितने लोग मर गए उसके कारण से ना, फिर अपना जो ये जो डेंगू फीवर आया ना, तो ये सारे फीवर क्यों आ रहे हैं, ये इन्फेक्शन क्यों आ रहे हैं जो पहले कभी थे ही नहीं, एक खत्म नहीं दूसरा शुरू, ये दूसरा खत्म तीसरा शुरू हो जाता है। और ये क्यों आ रहे, क्योंकि इंसान की इम्यूनिटी कम हो गई, पवित्रता का कनेक्शन डायरेक्ट इम्यूनिटी से है, तो पवित्रता की डिग्री जितनी बढ़ाएंगे ना उनको ये इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है। अगर आप खूब योग करें, राज मेडिटेशन का अभ्यास करें, अपना लाइट का ताज तैयार कर दें, अपना लाइट का ताज और जितना बड़ा बना देंगे, मैं जैसे आप बाबा ने कल पवित्रता की परिभाषा दी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में भी पवित्रता, खाली ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्माचारी, जैसे ब्रह्मा बाबा का आचरण था उस तरह का आचरण हमारा हो, जब ऐसी पवित्रता हमारे अंदर आएगी, एक्चुअली पवित्रता का अर्थ क्या है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पवित्रता, किसी भी देहधारी से ना लगाव हो ना झुकाव हो उसकी तरफ, ना किसी के प्रभाव में आना है और ना किसी से टकराव रखना है, ये भी अपवित्रता है। किसी भी देहधारी के प्रति लगाव झुकाव या उसके प्रभाव में आ जाना या किसी से टकराव रखना, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। किसी भी बात में क्या क्यों कैसे करना, ये भी अपवित्रता है, क्योंकि इससे आपके वैध संकल्प चलते हैं। अब नेगेटिव संकल्प क्या है और वैध संकल्प, ये दो मुख्य कारण है जिनसे हमारी पवित्रता कम होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। नेगेटिव संकल्प किसे कहते हैं? जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से होते हैं। काम विकार जो है मान देह दृष्टि, किसी की देह की तरफ आकर्षण होना, ये जरूरी नहीं कि मेल का फीमेल की तरफ है, फीमेल का मेल की तरफ हो, ऐसा नहीं, किसी भी देहधारी की तरफ मेरा अपनी देह में भी आकर्षण है, या किसी भाई का भाई में या बहन का बहन में भी आकर्षण है, उससे लगाव हो गया है, उसकी तरफ झुकाव हो गया है, उसके प्रभाव में आ गए हैं, उसके टकराव, उससे टकराव हो गया है, तो ये भी अपवित्रता है। तो काम विकार, क्रोध, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मेरी भी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मिक ऊर्जा, मतलब ज्ञान के में जल जाती है, जल जाती है ना, मेरी ज्ञान खत्म हो जाता है, सत्य की समझ खत्म हो रही, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, जैसे मैंने किसी को देह देखा, देह बांध से देखा, मेरी आत्मिक ऊर्जा खत्म हो गई, अज्ञान आ गया, देह की तरफ आकर्षण हुआ ना, मेरा क्या हुआ, ज्ञान खत्म हो गया, परमात्मा से डिस्कनेक्शन हो गया, परमात्मा से संबंध टूट गए सारे के सारे, और ड्रामा में विश्वास खत्म हो गया, ड्रामा से साक्षी दशा स्थिति होनी चाहिए ना, वो खत्म हो गई। तो इसलिए मेरा जो सारा जो बात है ना, वो मेनी जो मुख्य बात है कि देह दृष्टि है ना, किसी को भी देह के आकर्षण में होना, देह के भान में आना, यही काम विकार है। काम क्रोध, मैंने क्रोध किया आपको तो आप मेरी एनर्जी जली, आपकी भी जल गई क्योंकि आप भी दुखी होंगे। लोभ, मैंने कोई वस्तु की चाहना रखी तो मेरी एनर्जी भी जली और जिसकी चीज मैंने छीनने की कोशिश की या उसकी काबू करने उसको उसकी भी जल गई। मोह, मैंने मोह किया किसी के प्रति, मेरी एनर्जी भी खत्म होती है, उसकी भी खत्म होती है। अहंकार भी ऐसे ही, मैंने ईगो दिखाई अपनी तो आपकी भी एनर्जी जली। तो ये जो नेगेटिव संकल्प की विशेषता यही होती है कि इसमें आपकी भी एनर्जी खत्म होती, दूसरे की भी खत्म होती, सामने वाले की भी खत्म होती है। और वैध संकल्प क्या होते हैं? वैध संकल्प क्या और क्यों, क्या क्यों और कैसे से पैदा होते हैं, अर्थात जो हमारे संस्कार हो जाते हैं ना, ये तो स्वभाव, ये तो देहवान का स्वभाव है, पांच विकार। और देहवान का संस्कार क्या है? आलस्य। जो आलस्य है ना, इसमें हम क्या करते हैं, बस आलस में रहेंगे, लेजीनेस आ जाती है, हर चीज को टालते जाते हैं, अलबेलापन, बहानेबाजी करते हैं, दूसरों में दोष देखने की आदत डाल लेते हैं, नहीं मेरे कारण नहीं, इसने किया ना ऐसा हुआ, इसलिए मैं ऐसा हुआ, ये मैं अपने अंदर दर करता हूं, आलस्य मेरे को नुकसान कर रहा है, उसको नुकसान नहीं कर रहा है, अलबेला मैं हूं, नुकसान मेरा हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है, मैं आपके अंदर दोष देख रहा हूं, आप तो अपनी स्थिति में है, मैं आपके अंदर बुराई देख रहा हूं, आपके अंदर 99 गुण है, 99 आपके अंदर गुण है, अच्छे गुण है, और मेरे को आपका वही अवगुण है ना, वही दिखाई दे रहा है, आपको नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो रही है ना, बदलने की भावना, उसको पता भी नहीं मेरे को अंदर बदलने की भावना है, मेरी एनर्जी जल रही है, शक करना, अनुमान लगाना, मेरी एनर्जी जलती है, चिंता भय, मेरे को चिंता लगी हुई है, बच्चे की, किसी और चीज की, कोई और किसी सेंटर की है ना, किसी और को नुकसान नहीं, मेरी एनर्जी जल रही है, डर लग रहा है मेरे को, मेरी एनर्जी, मेरे को फोबिया हो गया, किसी को नुकसान नहीं मेरे फोबिया से, कई लोगों को अंधेरे कमरे में, अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को बंद कमरे से फोबिया होता है, किसी खुली जगह से फोबिया होता है ना, फोबिया माने उनको डर लगता है, तो उनका नुकसान मेरे को हो रहा है, उसको नुकसान नहीं हो रहा है, आप प्रेशर में है, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, किसका नुकसान नहीं हो रहा, मेरा नुकसान हो रहा है, ईर्ष्या द्वेष मेरे मन में चल रही है, दूसरे का नुकसान नहीं, मेरा नुकसान हो रहा है, तो ये जो है एनर्जी हमको थका देती है, हमारी एनर्जी को जला देती है। काम विकार जैसे, ये पांच विकार जैसे सूखी लकड़ी जलती है ना, वो जल के खत्म हो जाते हैं, किंतु इनसे क्या होता है, गीली लकड़ी होती है ना, उसको आग लगाओ, पेट्रोल डाल के मिट्टी का, वो लकड़ी तो जल जाती है, काली हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, तो ये हालत होती है, तो ये हमारी एनर्जी को जला देते हैं। अब हम क्या करें? बाबा ने हमें बड़ा अच्छी बातें बताई, बाबा ने हमको एक नया तरीका बताया। एक्चुअली हुआ जब 1981 में जब ये HIV का इन्फेक्शन हुआ, आज सारे विश्व में फैल गया, गांव गांव में है, सिरोही जिले में बहुत लोगों को है, हर जगह फैल गया HIV। तो क्या हुआ, जब ये हुआ तो 1986 में लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि ऐसा इन्फेक्शन क्यों आ रहे हैं, वायरस क्यों आ रहे हैं, वो बंदर का वायरस था, एड्स वाला वायरस बंदर में थी बीमारी और इंसान को आ गई। तो बंदर की बीमारी इंसान को कैसे आ गई? अब मैंने बताया ये जो कोरोना वायरस कहां से आया, कहां से आया? सांपों से आया, चमगादड़ से आया, है ना, बैट से आया। वहां से इन्फेक्शन जो उनके अंदर जो था उसका वायरस हमको कैसे लग गया, उसका वायरस हमको कैसे लग सकता है? जब हम उस लेवल तक गिर जाए तभी तो लगेगा ना। जब हम बंदर के लेवल तक गिरे तो बंदर का वायरस हमारे अंदर घुस गया, है ना। जब हम अभी फिर स्वाइन फ्लू आया तो स्वाइन फ्लू किसका था? पिग्स का। जब सुअर जो होता है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं ना पिग्स, है ना, उनके लेवल पे गिर गए तो उनका इन्फेक्शन हमारे अंदर घुस गया, है ना। तो हमें उस लेवल से गिरे हैं ना, हमारी प्योरिटी जो इंसानों का एक मर्यादा होती है, हम उस लेवल से नीचे गिर गए हैं। अभी जो बर्ड फ्लू आया, उसके पहले दूसरा फ्लू आया था, ये जो होता है ना मुर्गे वाला, है ना, वो फ्लू आया था। तो हमारा लेवल कहां तक गिर रहा है, किस लेवल तक हमारी प्योरिटी का लेवल गिर गया है, मर्यादा का लेवल गिर गया है। तो अगर जितना हम गिरते जाएंगे उतना अधिक इस तरह के इन्फेक्शन हमको होते जाएंगे। और आगे आने वाले समय में क्या होगा, किसी के इन्फेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। आपके नाक में जो वायरस है ना, कीटाणु बैक्टीरिया है, आपके गले में ही है, आपको कहीं से इम्पोर्ट नहीं करने हैं। आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाएगी हमारे लोगों में जो सारा दिन डरते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में खोए रहते हैं, आलस में अलबेलेपन में पड़े रहते हैं, चिंता भय करते हैं, दूसरों पर शक करते हैं, अनुमान लगाते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, वो अपने ही दुश्मन बन, दूसरों के गुण देखते रहते हैं, है ना, बदलाने की भावना रखते हैं दूसरों से, उनको कोई बैक्टीरिया वायरस की आवश्यकता ही नहीं है, उनको अपने ही बैक्टीरिया खा जाएंगे, है ना, उनको कोई बम की आवश्यकता नहीं है, है ना, उनको कोई अर्थवेव की आवश्यकता नहीं है, है ना, कोई तूफान आए, सूरज से किरणें आए, कोई ऊपर से उल्का गिरे, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही वो खत्म हो जाएंगे। तो विनाश कैसे आ रहा है आप देखो। अब आप हमारे सामने दो तरीके हैं, या तो हम भगवान की श्रीमत पे चल के और क्या बन जाएं, ब्राह्मण से फरिश्ता बन के देवता बन जाएं। इसी जन्म में बनना है, अगले जन्म में बनना है कि सत्युग में बनना है, अभी बनना है कि देवता तो वहां जाके बनेंगे ना, कि यहां बनना है, यहीं बनना पड़ेगा ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि, ब्राह्मण ब्राह्मणा बेहद, ब्राह्मण किसे कहते हैं, जैसे ब्रह्मा माना बेहद की माँ, सबकी माँ, सब मनुष्य जाति की माँ, शिव हम सब आत्माओं का पिता है और ब्रह्मा सब बेहद की माँ है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मनुष्य आत्माओं की माँ कौन है, ब्रह्मा, है ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमारी रचना करते हैं ना, तो बाबा क्या करते हैं हमको, हम थोड़े से आत्मा को 0.01% आत्माओं को बाबा हमें क्या करते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बना देते हैं। शूद्र माना जो जिनकी बुद्धि सराई देहभान, देखे संबंध संपर्क, देखे पदार्थों में और देखे स्वभाव संस्कार, देखे स्वभाव ये 5 विकार और देखे संस्कार ये 10 बातें मैंने जो बताई, आलस अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष, है ना, ये 10 बातें जिससे वैध संकल्प पैदा होते हैं और पांच विकारों से नेगेटिव संकल्प पैदा होते हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो बाबा ने मैं क्या कि हमारी मन को चेंज नहीं किया, हमारी बुद्धि, उस बुद्धि हमें दिव्य बुद्धि दे दी। दिव्य बुद्धि में ना जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, जिसमें सत्य की समझ भरी है, जिसमें एबीसीडी भरा हुआ है, एबीसीडी समझते हैं, ज्ञान माना एबीसीडी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर भगवान या बाबा, सी फॉर कनेक्शन माना संबंध, मेरे सारा संबंध उसके साथ है, और डी फॉर ड्रामा, मेरा इस परिवार में जन्म क्यों हुआ, मैं चेन्नई में क्यों मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म इसमें क्यों हुआ, मिजोरम में क्यों हुआ, असम में क्यों हुआ, दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, वही मुझे माता पिता क्यों मिले, वही भाई बहन क्यों मिले, वही नौकरी क्यों मिली, वही पति क्यों मिला, वही पत्नी क्यों मिली, वही बच्चे क्यों मिले, क्यों मिले बताओ, क्यों मिले। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म को कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है और कौन है, प्रिंसिपल एक्टर है और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म को कर्मों के हिसाब किताब के, कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है और अभी भी 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, और उसमें से 0.01% आत्माओं को उसने क्या किया है, शूद्र से ब्राह्मण बिठा बना के अपनी गोद में बिठा लिया है, अपनी गोद में बिठा के उनको राजयोग सिखा रहा है। रचता और रचना के आदि मध्यन का ज्ञान देकर उनको ब्राह्मण से फरिश्ता बना के, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बना करके, और फिर बीज रूप स्थिति में ले जा करके उनको अपने साथ वापस कहां ले जाएगा, स्वीट साइलेंस होम परमधाम लेके जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन, और फिर कहां भेज देंगे वापस हमको, सुखधाम स्वर्ग में भेज देंगे, राइट। तो कितने परसेंट आत्माओं को, 0.01% आत्माओं, है ना, ज्यादा आत्माओं को नहीं, 0.01% आत्माओं को, है ना। सत्युग में तो जाएंगी आत्मा शुरू में 0.001%, है ना, सत्युग में जाएंगे, और जो त्रेता में आएंगे वो 0.01%, है ना, राइट। और जो जो असतन बनने वाले वो कितने हैं, 0.00001%, है ना। जो 16108 में आने वाले हैं वो कितने होंगे, उसमें भी 4 जीरो और लगेंगे, है ना, बाकी को 3 जीरो लगेंगे एक लगने से पहले, है ना, 9 लाख वाले, है ना। तो आप समझो कितनी रेयर हम आत्माएं हैं, उन आत्माओं को बाबा ने अपनी गोद में बिठाया। हर ब्राह्मण का मतलब ही क्या है, हम सबके सब सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप बाप दादा की गोद में बैठे, ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर। लाइट का शरीर माना क्या, पवित्र संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन, और संपूर्ण पावन सत्व प्रधान संस्कार। वो ब्रह्मा बाबा उसका एम्बॉडीमेंट बन गया, उसने पुरुषार्थ करते 33 साल पुरुषार्थ करके ब्रह्मा शिव बाबा से कंबाइंड होके, और हर सेकंड हर संकल्प हर श्वास हर संकल्प बोल और क्रम में शिव बाबा से कंबाइंड रहकर उसी श्रीमत पे चल के अपने मन को बुद्धि संस्कार तीनों को संपूर्ण पावन सत्व प्रदान बना लिया। और 18 जनवरी को उन्होंने शरीर छोड़ के 1969 को शरीर छोड़ के आज से 51 साल पहले शरीर छोड़ के और वो शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया। सूक्ष्म वतन बेसिकली क्या है, शिव बाबा का दिल है। जैसे बच्चे बच्चे क्या होते हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे सपूत बच्चे क्या होते हैं, वफादार बच्चे क्या होते हैं, वो माँ बाप के दिल में रहते हैं ना, शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया। और क्योंकि उसका दिल सच्चा और साफ था उसमें शिव बाबा आके बैठ गया, तो क्या बन गया, बाप दादा बन गया, है ना, बाप दादा बन गए, नहीं बन गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, मुझे हर सेकंड हर संख्या हर श्वास में शिव बाबा से कंबाइंड रहना, निराकारी मुझे निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से परमधाम घर में कंबाइंड रहना है। और इस दुनिया में साकार में मुझे हर ब्रह्मा बाबा को, साकार ब्रह्मा को और अव्यक्त ब्रह्मा को, साकार ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा को हर संकल्प में हर बोल में हर कर्म में उनको फॉलो करना है, मतलब ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी बनना है। तो क्या होगा मेरे अंदर, क्या होगा, क्या होगा मेरे अंदर, मेरे अंदर मैं ब्रह्म, तो मेरा क्या होगा, मेरे अंदर वो करंट आ जाएगी, मेरी बुद्धि मन और संस्कार तीनों पवित्र हो जाएंगे। और बुद्धि का मन, बुद्धि बना पवित्र होना माना संपूर्ण ब्राह्मण। अगर मैंने मन भी, ब्राह्मण शब्द छिपा हुआ है, मतलब बेहद की बुद्धि यूज करके अपने मन को मनमनाभाव कर दो, मतलब अपने हर विचार में हर भावना में क्या भर लो, ये ज्ञान भर लो, ABCD भर लो, है ना, ABCD भर लो, मतलब मैं आत्मा हूं, हम सब आत्माएं हैं, एक परमधाम निवासी परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है, और मुझ आत्मा के सर्व संबंध उनके साथ हैं, मेरे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं, और इस हिस्ट्री ऑफ ड्रामा क्या है, इससे साक्षी दृष्टा, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे राजयोग सिखा रहे हैं, मुझे रचता और रचना के आदि मध्यन का ज्ञान दे रहे हैं, और इसके गहराई में उतर जाओ, है ना। जितना इसकी गहराई में हम उतरेंगे तो क्या होगा, मेरे जैसे जन्म के विक्रम विनाश होंगे, और जैसे जैसे मेरे विक्रम विनाश होते जाएंगे मेरा मन क्या बनता जाएगा, पावन सत्व प्रधान बनता जाएगा। जब 63 जन्मों के पाप कर्म पूरी तरह से विनाश हो जाएंगे तो मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। तो बुद्धि, क्योंकि सारे पाप कर्म कहां रहते हैं, बुद्धि में नहीं रहते हैं, मन में रहते हैं, सारे पाप कर्म मन में रहते हैं, स्मृति के रूप में, वृत्ति के रूप में, भावना के रूप में और संकल्पों के रूप में रहते हैं। तो सारे पाप कर्म, इसलिए मनमना भव, मेरा हर विचार बाबा की श्रीमत पे हो, और उन्हीं विचारों में खोया रहा हूं। ये मुरली जो बाबा की मुरली है ना, जैसे आज की मुरली थी योग बल, ये मुरली के अंदर बजनी चाहिए सारा दिन। 100 की माला में आना तो क्या करो, 100 बार मुरली के पॉइंट अंदर बजने चाहिए, एक दिन में 100 बार। कितनी बार? अगर 16108 में आना तो 8 बार बजनी चाहिए। बाबा ने कहा 8 बार 5 रुपये डील करो, 8 बार कम से कम, क्योंकि 8 बार का मतलब ही 16108 बार आने का था पुरुषार्थ। 100 बार किया तो किसमें आ गए? 100 की माला में आ गए। 100 माना 108 की माला, 8 तो हो गए ना, 8 माना जिनको श्वासों श्वास एक बाबा याद रहता है और बाबा की मुरली, बाबा ने आज क्या कहा, अंदर बजता रहता है, राइट। तो जितना हम इसको एबीसीडी का अभ्यास करते जाएंगे उतना क्या होगा, मेरे को सत्य स्वरूप दिखाई देने लगेगा, अपना अनुभव होना शुरू हो जाएगा, दूसरे का भी सत्य स्वरूप अनुभव होना शुरू हो जाएगा, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाएगा, है ना, सर्व संबंध बाप के साथ अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या क्यों कैसे खत्म हो जाएगा, और ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी बन जाएंगे, तो संपूर्ण पवित्रता आ जाएगी। तो जितना हम अभ्यास करेंगे घोटेंगे इसको, उतनी मेरे अंदर क्या आती जाएगी, संपूर्ण पवित्रता आती जाएगी, और जब पवित्रता आती जाएगी उतना मैं पाप से कंबाइंड होता जाऊंगा। जो पहली स्टेज है ना, जो इसमें एबीसीडी का मनन, मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन, उससे आपके अंदर क्या आती है, उससे आपके अंदर आती है, इसको बोले देहिमानी स्थिति, ये पुरुषार्थ की स्थिति है। फिर आपके अंदर जो पवित्रता आने, पवित्र मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा रियल पे फील होने लगता है, मैं पूरी धारणा में पवित्रता, जैसे ना पवित्रता आ गई, खान पान की शुद्धि अपने हाथ से बनाते हैं, पूरा हाइजीन सफाई से बनाते हैं, जैसे हम ब्राह्मण कैसे खाना बनाते हैं, कितनी सफाई से खाना बनाते हैं, नहा के खाना बनाते हैं, सफाई, ये सारी बातें हमको तो बीमारी आ ही नहीं सकती ना, अगर सच्ची दिल से जो सच्ची मुझे बाबा के लिए भोग बनाते हैं, दिल से बनाते हैं और बाबा की याद में खाते हैं, हाथ धो के प्यार से, जब भी खाना खाना बैठे ऐसे नहीं बस ऐसे किया और आके बैठ गए, नहीं, साबुन से अच्छे से हाथ धो के आओ, पूरी विधि से, 5 स्टेप, इसके 5 स्टेप हैं हाथ धोने के, और फिर अच्छे ड्राई करके फिर खाना खाओ, बाबा की याद में खाओ, आपको हो ही नहीं सकता इन्फेक्शन, गारंटी है, कोरोना वायरस का पिताजी भी नहीं हो सकता आपको, ठीक है, इसका भी कोई बाप आ जाए ना तो भी नहीं हो सकता, है ना, पर अपनी हाइजीन मेंटेन रखो, खांसी आ रही है छींक आ रही है, अपना टिश्यू पेपर या हाथ लगा के ही करो, फिर हाथ धो लो, है ना, आपको कभी इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है। एकांतवासी को कैसे इन्फेक्शन हो जाएगा, जो एक के अंत में खोए रहेगा, जो पवित्रता आ गई, फिर पवित्रता आने से आप बाप से कंबाइंड रहोगे ना, सोचता बाप से, तो आपके संकल्प चलने कम हो जाएंगे, क्योंकि बाप को सोचता ही नहीं है, शिव बाबा को सोचता ही नहीं है, तो आपका पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, वर्तमान में बाप से कंबाइंड होकर सोचोगे, कंबाइंड होकर देखोगे, कंबाइंड होकर पढ़ोगे, कंबाइंड होकर सुनोगे, कंबाइंड होकर बोलोगे, कंबाइंड होकर खाओगे, कंबाइंड होकर सुनो चलोगे, कंबाइंड होकर सोओगे, तो क्या होगा, कंबाइंड बाप से कंबाइंड होकर संबंध संपर्क में आओगे तो शांति आ गई, पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, तो संकल्प आपके इतने स्लो हो जाएंगे, इसको शांति कहते हैं। जब ऐसे बाप से निरंतर साथ का अनुभव होते रहेगा, तो जैसे बाबा सबको एक्सेप्ट करता है बिना किसी शर्त के, तो इसको रूहानी प्यार कहते हैं। किसी से आपका ना लगाव है, ना झुकाव है, ना प्रभाव है, ना टकराव है, सबसे प्यार है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छी लगती है, ये नहीं, सब अच्छे लगते हैं, सब बाबा के बच्चे, बीके हो चाहे नॉन बीके हो, सब अच्छे, सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, क्या क्यों कैसे की बात नहीं है, कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, गाली दीजिए, है ना, उसकी गाली देने से मैं छोटा नहीं होता, किसी ने मेरी गलानी कर दी, किसी ने मेरे को बुरा भला कहा, उससे मैं छोटा नहीं होता, किसी ने मेरी महिमा कर दी तो मैं बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, जो मैं हूं मुझे पता है, आप किसको आपकी महिमा करे फूल का कुप्पा हो जाओ, और कोई आपकी बुराई कर दे तो आप छोटे से हो जाओ मुंह आपका, वो नहीं, जो आपको पता है वो आप है ना, तो ऐसे अपने अंदर से स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, तो इससे क्या होगा आपके अंदर, तो पवित्रता आई, खान पान में पवित्रता आ गई, अन्न की पवित्रता आ गई, संघ की भी पवित्रता आ गई, संघ भी आपका पवित्र हो गया, ब्राह्मणों के साथ उठना बैठना, बाबा के साथ रहना, है ना, संघ भी अच्छे लोगों का, इधर उधर की बातें करने वाले, फालतू करने वाले, टीवी न्यूज़पेपर इंटरनेट सारा टाइम देखते रहने वाले, इनसे आपको क्या करना है, दुनिया की खबरें क्या सुननी है ना, वो मोटी मोटी खबरें सब बता देंगे, अपने आप ही बता देंगे लोग, दुनिया वाले, आपको चिंता करने की बात है क्या, सुबह मरीज वाला बाबा ही बता देगा, बच्चे चलो सारे विश्व को सकाश कैसे देना है, आओ मेरे साथ आओ, चलो सकाश देंगे, तो आपको संघ बाबा का मिलना है, बाबा और बाबा की मुरली का संघ करना है, और चौथा देवी गुणों की धारणा, गुस्सा करना ही नहीं है, चिंता कर, काम क्रोध लोमो अहंकार में फंसना ही नहीं है, देवी गुणों सत्यता निर्भयता सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निमित्त जो कल बाबा ने बताया, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, सम्मान देकर सबको सम्मान देना, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, परमान प्रदार बनके, है ना, अंतर्मुखी एकांतवासी बनके, है ना, बेहर की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकाग्रता, वैसे इकोनॉमी, एक नामी, एक स्थिति, एक स्थिति में बस बाबा के साथ लगे रहो, लवलीन रहो, तो क्या होगा, ये रूहानी प्यार की, जब जितना ये रूहानी प्यार सबके सबको एक्सेप्ट करते जाओगे बिना किसी शर्त के, उतना आप बाप से कंबाइंड रहोगे, ऐसा फील होगा, सूक्ष्म होता माना मेरी बुद्धि और मन पवित्र हो गया, मेरी लाइट की बॉडी बन गई, लाइट की बॉडी बड़ी हो गई, लाइट की बॉडी बड़ी हो गई तो क्या हो, हल्की, लाइट की बॉडी तो हल्की है, कहां जाएगी, सूक्ष्म कुछ और नहीं है, जहां सूक्ष्म माना पवित्र, जितनी आपकी बुद्धि और मन पवित्र हुआ उतना आपका मन बुद्धि इस दुनिया से हटता जाएगा, उतना जितना हटता जाएगा और आकर्षित नहीं होगा उतना सूक्ष्म वतन माना बाबा के दिल तक नशीन बनते जाओगे, बाप दादा की गोद में पहुंच जाओगे, उतना ज्यादा बाबा की गोद का अनुभव होगा, इमेजिन नहीं करना, विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, रियल में रियलाइज होगा कि मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, अनुभव होगा बाबा की गोद में बैठा, बाबा मुझे पालना दे रहा है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे माँ का प्यार दिव्य बुद्धि की रूपी लिफ्ट दी, दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र दिया और बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना दिया, 500 रूप की ड्रिल, अकाली अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगमी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, है ना, ये 500 रूप की ड्रिल, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी अपने आप ही घूमता रहेगा चक्र, स्वदर्शन चक्र, परदर्शन चक्र घूमना बंद हो जाएगा, स्वदर्शन चक्र घूमता जाएगा, तो इससे अपने आप ही सारे विकार खत्म होते जाएंगे, पाप कटते जाएंगे, और टीचर के रूप में सदगुरु के रूप में बाबा ने क्या किया, मुझे 63 दिन के पाप का विनाश करा के मुक्ति माना, सत्य की अनुभूति और परमधाम की अनुभूति होती रहेगी, संकल्प चलने बंद हो जाएंगे और सत्य की अनुभूति होती रहेगी, है ना, जीवन मुक्ति स्थिति की अनुभूति होती रहेगी, और बंधु के रूप में क्या होगा, सारा बोझ, लौकिक अलौकिक बोझ, घर की जिम्मेवारी, सेवा की जिम्मेवारी, अलौकिक जिम्मेवारी, सेंटर की जिम्मेवारी किसको दे दो, बाबा ये तुम्हारा सेंटर है, बाबा तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, है ना, तुम संभालो, आप जैसे मुझे कहेंगे वैसे मैं करती रहूंगी, वैसे करता रहूंगा, तो ऐसे अपने आप हल्के रहेंगे, और बंधु के रूप में, सखा के रूप में सारी जो नेगेटिव बातें बाबा को बता दो, सोने के में लेटर लिख के सब पोता मिल दे दो, है ना, और साजन के रूप में क्या करता है, बाबा दैवी गुणों से जाता रहेगा, सज्जन के रूप में जो आपकी कमजोरी है ना बाबा उसको निकालता रहेगा, और बच्चे के रूप में अपना तन मन धन उसको वारिस जाओ, उसको अपना वारिस बना लो, तो ऐसे एक संबंध की अनुभूति करते जाओ तो क्या होगा, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होने लगेगी, संतुष्टता आती जाएगी, सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव होता जाएगा, और इच्छा मात्र अविद्या, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो आप बाप के साथ लवलीन हो जाओगे, है ना, बाप के साथ लव में लीन हो जाओगे, ऐसा जब अंदर से फील होगा कंबाइंड स्थिति का अनुभव होगा, इसी को आनंद कहते हैं, और जब एक बार आनंद की स्थिति अनुभव होगी ना तो सत्य को प्रकट शक्ति आ जाएगी, फिर दुनिया वाले हजार दें, गाली दें, कुछ भी कहें, आपको बेवकूफ कहें, परवाह नहीं होगी, है ना, सत्य को परख लिया, मुझे तो अमृत तिलक करना ही है, भले घर वाले मना करें, बाथरूम में जाके करना है, ठीक है, छत पे जाके करना है, घर वाले कहे मना करें, सो जाओ नहीं, घर वाले मना करते हैं ना, कहीं भी करें, छत पे जाके करें, कहीं भी करेंगे, बाथरूम, अरे घर वाले बाथरूम में तो मना नहीं कर सकते, बाथरूम में जाके करेंगे ना, तो अमृत वेला करना ही करना है ना, मुरली सुने जाना ही जाना है सेंटर पे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी धरती इधर से उधर हो जाए, भूकंप भी आ जाए, मकान भी टूट जाए, वो टूटे मकानों के ऊपर से जाना है, ठीक है, जाना ही है ना? तो ये सत्य को परखने की शक्ति आ जाएगी, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी, ऐसी तब चाहिए, इसे कहते पवित्रता, इसमें आपको हिम्मत नहीं कोई कोरोना वायरस आ जाए, है ना, कोई दूसरा वायरस नया भी निकला है वो भी नहीं आ सकता, है ना, विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ जाएगी, है ना, विस्तार को माना आपके सामने पहाड़ जैसी समस्या होगी वो अपने आप ही राय बन जाएगी, है ना, और समेटने की शक्ति माना मन बुद्धि को समेट के कहीं भी, सपोज आपको बोला खबरदार से निकले तो यहीं बैठ जाओ, तो आप क्या करोगे, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाओगे, कंबाइंड करंट आने लगे किसी हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ आंख उठा के देखने की भी, है ना, फिर कोई थप्पड़ भी मारेगा ना आपको, कुछ भी करे चाहे तो सहन करने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि करंट आ रही है ना, बैटरी चार्ज हो रही है, सहन करने की शक्ति आ जाएगी, संभालने की शक्ति आ जाएगी, और क्या होगा, सामना करने की शक्ति, कोई और भी कुछ हो जाए जैसे प्रहलाद था ना, प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, पहाड़ से नीचे डालने की कोशिश की, इन्फेक्शन वाला हाथ लगा के इन्फेक्शन वाला आपकी नाक को ही पकड़ ले कोई कुछ कर ले तो सामना करने की शक्ति आ जाएगी, इतनी प्योरिटी आ जाएगी अंदर से, है ना। वायरस ही मर जाएगा ना, दूर से ही वायरस मर जाएगा, ऐसी शक्ति आ जाएगी। और फिर क्या होगा, सहयोग करने की शक्ति। फिर भी उसके बाद, इसके बाद हाँ, फिर वो कहे ना भाई साहब मेरी थोड़ी मदद कर दो, मुझे तकलीफ हो रही है। अच्छा भाई साहब मैं करता हूँ, अच्छा बहन जी मैं करता हूँ। तो इतनी सहयोग, फिर सातवीं एनर्जी का बैलेंस हो, फिर हीलिंग एनर्जी आ जाएगी, फिर आपकी आंखों में, आपके बोल में, आपके वाइब्रेशंस में हीलिंग एनर्जी आ जाएगी, आपका अवमंडल बड़ा हो जाएगा। तो काम विकार छूट जाएगा तो लाइट का ताज आ गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार छूट गया तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाएगा। फिर जहां भी बैठे हो वहां सारे विश्व में आज इतने कोरोना वायरस हो रहा है, लोगों को सबको वाइब्रेशन जाएंगे, सबको शक्ति मिलेगी, उनको शांत पवित्रता की शक्ति। ज्ञान का दान होता है महादान, ज्ञान का दान होता है दान, और पवित्रता का दान होता है महादान। शांति रूहानी प्रेम अतिंद्रिय सुख आनंद और शक्तियों का दान होता है वरदान। तो हम देवता जब हमारे, इस समय हमारा रूप क्या होना चाहिए, अखंड दानी। संगम युग का देना रूप हमारा क्या होना चाहिए, अखंड दानी। जो भी आए बिना बोले भी उसको लगे आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है। जब आपने कहा अपनी सूरत से बाप की सूरत प्रत्यक्ष करो, तो मेरी सूरत से बाप की सूरत प्रत्यक्ष होनी चाहिए, ऐसी स्थिति बनाने की आवश्यकता है ना। तो ऐसी सूरत मेरी बन जाए, है ना। दूसरा फिर जो है अखंड महादानी, माना पवित्रता। तो पवित्रता का ऑरा, किसी कोई देवान से मेरे पास आए भी देवान खत्म हो जाए उसका, कोई संबंध वाला भी उसको देवान नहीं मेरे से आना चाहिए, कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर किसी को मेरी तरफ आकर्षण होता है तो वो मेरी गलती है। रूहानियत में टिके, जैसे राधा की चित्र को देखिए इसको आकर्षण नहीं होता, कृष्ण को देखिए इसको आकर्षण नहीं होता, देह का आकर्षण नहीं होता, रूहानियत का आकर्षण होता है, कशिश होती है, रूहानी कशिश होती है। ऐसे हमको देखकर रूहानी कशिश हो, रूहानी आकर्षण हो, वो हमें चुंबक जैसा इफेक्ट होना चाहिए, वो हमारे अंदर पैदा, हमें खुद हमारे अंदर पैदा होने लगेगा। तो जब चार नियम चार मर्यादाएं पक्की कर लो, आपको वायरस कभी नहीं आएगा। पहला, अमृत वेला कभी मिस मत करो, बाबा से कंबाइंड होके परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, परम धाम सूक्ष्म वतन, बस यही ड्रिल करते रहो और बाबा के साथ एक संबंध की अनुभूति करो। दूसरा, मुरली कभी मिस नहीं करो, सेंटर पे जाके करो, सेंटर पे जाओ। काफी लोग मुरली टीवी पे देखते हैं, पढ़ लेते हैं, उससे नहीं। खाना कभी टीवी पे खाते हो क्या? टीवी पे चला के देख खा लो ना, वीडियो निकालो ब्रेकफास्ट, वो आगे थाली आगे सज के ना, उसमें ब्रेकफास्ट हो गया सबने। तो टीवी पे मोबाइल पे मुरली देखना ऐसा ही है जैसे कि मोबाइल पे ही खाना खा लो ना, ब्रेकफास्ट कर लो ना। सेंटर पे जाके आपका सेंटर के आपका विशेष स्थान है सेंटर पे, वहां जाके बैठो, वो वाइब्रेशन शक्ति लो, उस वाइब्रेशन में मुरली अंदर जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन से 100 बार करो कम से कम, एक एक लाइन का अनुभव करो, एक एक लाइन का अनुभव करो, है ना। मनन सारा दिन उसी में लवलीन रहो, खोए रहो, काम अपने आप होते रहेंगे, चिंता मत करो, वो अपने आप हो जाएंगे। काम करने जो भी काम करते वो सबको आता है, मेरे को पेशेंट देखने आते हैं, मुझे आते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, सोचना नहीं पड़ता है, बहुत इजी है पेशेंट देखना। खाना बनाना बहुत इजी है, आप माताओं के लिए बहुत अच्छा है। जिसका जो भी काम है, दुकानदारी करनी, दुकानदारी में टाइम विचार नहीं करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक होता रहेगा, गलतियां कभी नहीं होंगी, बाबा की याद में रहेंगे तो, है ना। तो ऐसे काम करो, सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरण करते, सोने के पहले वेंटिलेशन कर लो, चार्ट भर लो, एक लेटर लिख लो बाबा गलतियां जो हुई, चार्ट भर लो, मुरली पढ़ के बाबा को याद कर सो जाओ, मुरली पढ़ के सो, नींद अच्छी आएगी, सपने फालतू सपने नहीं आएंगे, 10 बजे सो जाओ, है ना, सुबह 4:30 उठ जाओ, तो आप देखेंगे नींद बहुत अच्छी, सारा दिन फ्रेश रहोगे। तो चार नियम है, चार परहेज हमारे, कौन से मर्यादा कौन सी है, मैंने बताया पवित्रता। जितनी गहराई से पवित्रता आएगी, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म होगा, क्या क्यों कैसे खत्म होगा, तो आपके अंदर शक्ति आती जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी पवित्रता उतनी इम्यूनिटी होती जाएगी। शुद्ध सात्विक भोजन, सफाई से बना सफाई से खाओ, हाइजीन से बनाओ हाइजीन से खाओ, बाबा की याद में खाओ, सत्संग बाबा और मुरली का संग करो बस, और फालतू बातें अखबार टेलीविजन मोबाइल में लगे रहते वो मत छोड़ दो। और चौथा, देवी गुणों की धारणा, मीठा बोलो सत्य बोलो, सत्य व्यवहार करो, मीठा व्यवहार, हमारा व्यवहार आहार और विहार तीन चीज हमारी, व्यवहार सत्य व्यवहार हो, आहार हमारा सत्य हो, और हमारा विहार, माना विहार में चार बातें आती हैं, वायुमंडल में हवा क्रॉस होती रहे, धूप आती रहे कमरों में, धूप में बैठो, इधर उधर मत बैठो, ठंडी में एसी चला के बैठे वो नहीं, है ना, अपने खुली हवा में ज्यादा रहो, और फिर पहले वायुमंडल है ना, उसमें सुबह शाम शेयर करो, एक घंटा शेयर कर लो, सुबह 45 मिनट शेयर कर लो, आधा घंटा शेयर करो, तेज शेयर कर लो, एनर्जी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरा संग, ऐसे लोगों का जो हाइजीन की प्रॉपर, उनके साथ उनका संग करो, गंदे तरह से रहने वाले, गंदे तरह से खाने वाले, उनका संग मत करो, उनके कॉन्टेक्ट से आपको इन्फेक्शन लग जाएगा, है ना। मिलो, दूर से मिलो, नमस्ते, हाथ किसी से मत मिलाओ, नमस्ते, है ना, हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो, है ना। तो आप दूर से नमस्ते, हाथ मिलाना बंद कर दो, आंखों से मिलो चाहे हाथ जोड़ो, है ना, क्योंकि हाथ से इन्फेक्शन फैलता है, ये ध्यान रखो। ये जो हमारे जो होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, जो कमरे में जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, दरवाजे पे लगे होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, हैंडल होते हैं, इनपे भी कीटाणु होते हैं, है ना। पेन किसी ने दिया, मेरे पेन पे कीटाणु हो सकते हैं ना, तो अपना ही मतलब उस पर सफाई से यूज करो, है ना, उनको बार बार जब साफ कर लो, है ना। तो इस तरह से अपने आप को प्रिकॉशन लो, और देखो आपको ना कोरोना वायरस रहेगा, नेगेटिव और वैध चिंतन खत्म हो जाएगा, विकारों का चिंतन, विकारों का व्यवहार खत्म कर दो, व्यर्थ संकल्पों का व्यवहार खत्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म का व्यवहार खत्म कर दो, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आपको, प्लस खान पान शुद्ध होगा, सफाई होगी व्यवहार में, जो ब्रह्मा बाबा ने सिखाई है, हमारे ब्राह्मणों की जो नीति और नीति है उसमें व्यवहार करो, तो आपको कोरोना वायरस या कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपको तंग नहीं करेगा, और आने वाले समय में इवन भूकंप भी आपको तंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद।